को देखो वही है कहता बाबा तो बस मेरा है।
ओम शांति। हम सभी ने अनुभव किया कि जब जब हम राजू भाई जी की बातें सुनते हैं तो बाबा से जो हमारा प्यार है वो और गहरा हो जाता है। तो उस दिन सभी ने सोचा कि बात थोड़ी सी अधूरी रह गई थी, बहुत दिल से याद किया और हम सबकी दिल की याद आप तक पहुंच गई। तो आज पुनः इस ईश्वरीय परिवार में, हंसों की सभा में, हम तहे दिल से आपका पुनः स्वागत करते हैं। एक हाथ की ताली बजाएंगे सभी। यह हमारा पुनः स्वागत भी है और धन्यवाद भी है आपको। तो वो जो कुछ बची हुई ज्ञान की गहराइयां है आज पुनः उसमें चलते हैं राजू भाई जी के साथ। ओम शांति।
ओम शांति। सभी ने आज स्वतंत्रता दिवस मनाया। आप सब तो सच्ची सच्ची स्वतंत्रता दिवस मना रहे हो। स्वतंत्र हो गए ना? नहीं हुए? तब तक बंधन में रहेंगे। अगर आप सबको एक सेकंड में इस शरीर से उड़ने का अभ्यास हो जाए तो इससे बड़ी स्वतंत्रता और क्या होगी। सबसे बड़ा बंधन तो इस शरीर का ही है ना। और जब हम योग अभ्यास करते हैं तो इस शरीर से ही डिटैच होने का अभ्यास करते हैं। बाबा ने हम सब बच्चों को कई प्रकार के बंधनों से स्वतंत्र कर दिया है। दुनिया में तो कितने बंधनों में लोग बंधे हुए हैं। भले स्वतंत्रता दिवस देश के हिसाब से एक अपना महत्व रखता है, हमारे भारत देश की आजादी का पर्व है, विदेशियों की गुलामी से हम सब मुक्त हुए, लेकिन कितने प्रकार की गुलामी में जकड़े हुए हैं। कई प्रकार की आदतें, स्वभाव, संस्कार, मन के बंधन, तन के बंधन, संबंध के बंधन, हर आत्मा को अपने अपने बंधन में बांधे हुए हैं। इसलिए जहां परतंत्रता है, बंधन है, वहां ही दुख और अशांति है। और बाबा ने हम सब बच्चों को इन सब बंधनों से मुक्त होने की बहुत अच्छी विधि बता दी है। एक सेकंड में फुल स्टॉप लगाओ, अपने स्वस्वरूप में स्थित होकर इस देह से डिटैच हो जाओ, सब बंधन समाप्त हो जाएंगे। तो ऐसी स्वतंत्रता हम सब बाबा के बच्चे रोज मनाते हैं। संपूर्ण स्वतंत्रता तो कर्मातीत स्थिति के बाद ही होगी, लेकिन फिर भी कई प्रकार के बंधनों से हम सब मुक्त हैं। कितने प्रकार के विकार मनुष्य आत्माओं को सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उनकी परतंत्रता है। और कितनी स्वतंत्रता होते हुए भी सुरक्षा की जरूरत है। हैं स्वतंत्र, लेकिन आप देखो चारों तरफ से जितना बड़ा वीआईपी उतना ही सुरक्षा के घेरे के अंदर, बंधन के अंदर, कहीं पर भी जा नहीं सकता, अपने मन से कुछ कर नहीं सकता। जैसे सुरक्षा गार्ड कह रहे हैं वैसा ही सारे से चलना पड़ता है। और बाबा ने हम सबको, हर एक को अपना अपना सुरक्षा का घेरा दिया है। ये सबके साथ सब स्वरक्षक बने हो, स्वयं की स्वयं रक्षा करना आता है ना। वैसे तो कोई दैहिक रूप से हमारा शत्रु नहीं है, हम सब आत्मा रूप में एक दूसरे के मित्र, स्नेही और सहयोगी हैं। लेकिन जो हमारे दुश्मन हैं, माया है, विकार हैं, जिनसे हमने बहुत समय मित्रता रखी और अब अंतिम समय में, अंतिम जन्म में हम उनसे विदाई ले रहे हैं, तो वो शत्रुता करते हैं। और उस शत्रुता से बचने के लिए अपनी सुरक्षा का घेरा हमको खुद ही बनाना पड़ेगा, स्वरक्षक बनना पड़ेगा। तो आप सब समझते हो कितना भी विकराल रूप माया का क्यों न हो, बाबा कई बार कहते हैं ना, वो शेर की तरह सामने आती है, लेकिन वो कागज का शेर है, खिलौना है, फिर भी वो डरवा देती है, कई बच्चों को मुझा देती है, इसलिए बाबा हम सबको अपने अपने रक्षा कवच को तैयार करने की प्रेरणा देते हैं। आप सब अपने आप को समझते हैं कि हम सुरक्षित हैं इस माया के राज्य में, समझते हो? हैं सुरक्षित कि नहीं? अगर आपके चारों ओर एक बहुत सुंदर सुरक्षा कवच है तो सुरक्षित है, और वो सुरक्षा कवच है अपने श्रेष्ठ शुद्ध संकल्पों का, पवित्र संकल्पों का। अगर बहुत अच्छे संकल्पों में हम रमण करते हैं, रहते हैं शुद्ध संकल्पों में, तो हमारे चारों ओर एक बहुत सुंदर लाइट का ओरा तैयार होता है, और जो आत्माएं उस लाइट के ओरे पर में रह करके रहती हैं, चलती हैं, उनको सबसे बड़ी सुरक्षा मिल जाती। मनुष्य आत्माओं की नेगेटिविटी का प्रभाव उन पर नहीं पड़ता, उनकी गलत दृष्टि, उनके गलत विचारों का प्रभाव जो आज हर इंसान को प्रभावित करके कुछ न कुछ डिस्टर्ब कर रहा है, परेशान कर रहा है, चाहे वो तंत्र विद्या के द्वारा, चाहे मंत्र विद्या के द्वारा, चाहे किसी भी रीति से, व्यक्ति एक दूसरे से नफरत ईर्ष्या करके कुछ न कुछ उसके लिए उल्टा सोच करके और उसको गिराने का प्रयास करता है, उसका नुकसान करने का प्रयास करता है। लेकिन अगर योगी आत्माएं बहुत पॉजिटिव अच्छे संकल्पों में रमण करती हैं, तो ये ओरा इतना शक्तिशाली है, कोई भी नेगेटिविटी इसको क्रॉस करके अंदर नहीं आ सकती। है किसी को ऐसा अनुभव? मुझे अपना खुद का अनुभव है, एक छोटा सा अनुभव आपको सुना देता हूं। लौकिक में जब कोई ज्ञान में चलते हैं तो कुछ आत्माओं का सहयोग मिलता है और कुछ आत्माएं विरोध करती हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। मैं अपने लौकिक परिवार में तीन भाइयों के बीच में अकेला था। हमारे जो पिताजी के बड़े भाई थे उनको मैं दादा कहता था, ताऊ जी, वो बिल्कुल ज्ञान के विपरीत और बहुत सिद्ध पुरुष थे, माना सिद्धियां प्राप्त की हुई थी तंत्र मंत्र के माध्यम से, और वो कुछ न कुछ वैसे बहुत सिद्धि थी, बहुत सहयोग लोगों को देते थे, किसी के अंदर कोई भी सेल प्रवेश हो जाए तो उनके पास आते थे, वो धुनी लगाते थे और सामने कोई आ जाए तो वो सोल अपने आप कबूल देती थी और छोड़ के चले जाते थे। सामने आते ही वो सैकड़ों की भीड़ लगती थी मंदिर में उनके पास। तो बचपन से ही मुझे उन्होंने अपने पास रखा कि नहीं, इसको मैं ब्रह्मा कुमारी में नहीं जाने दूंगा, अगर ये चला जाएगा तो आगे कुलदीपक कौन बनेगा, घर को कौन संभालेगा। पिताजी बहुत पक्के, बहुत निश्चय बुद्धि ज्ञानी थे, उन्होंने सब प्रकार के प्रयास किए और मुझे करीब 15 साल की उम्र तक न बाबा से डायरेक्ट मिलने दिया न मम्मा से मिलने दिया, जबकि पूरा परिवार हर साल मधुबन में भी आता था। बाबा मम्मा कानपुर में आए, मम्मा को पिताजी ने ही निमंत्रण दिया, घर पर ले आए गांव में। मम्मा गांव में भी आई, उस समय तो मैं छोटा था, मुझे याद नहीं है, मैं 4 साल का था, 1960। मम्मा 2-3 दिन वहां रही गांव में, लेकिन मैं याद भी नहीं है, ले गए होंगे तो देखा होगा। लेकिन उसके बाद जब उम्र बढ़ने लगी तो बहुत किनारा करके रखा कि इसको कहीं भी कोई संग में नहीं जाने देना है, नहीं तो इसको भी कुछ हो जाएगा। लेकिन एक दिन अचानक हमारी लौकिक बहन यहां रहती थी माउंट आबू में ही, तो वो घर में आई और कहने लगी, चलो आपको मैं माउंट आबू घुमा लाती हूँ, आप अपने दादाजी से छुट्टी ले लो, घूमने की एक महीने की बात है, स्कूल की छुट्टी है। तो मैंने ऐसे ही बोला कि दादा ऐसे दीदी कह रही है, हम माउंट आबू घूम के आए, कभी नहीं गए हैं बाहर, कहीं नहीं जाते थे कोई लौकिक में। तो उनके मुख से निकल गया, भले घूम के आ जाओ, उनको क्या पता है घूमने जाएगा तो वापस ही नहीं आएगा। तो मैं घूमने के लक्ष्य से माउंट आबू आया और एक मास यहाँ रहा, बहुत अच्छी सेवाएं की, सब भाई बहनों का, दादियों का बहुत प्यार मिला और ऐसा एक सूक्ष्म जादू लगा जैसे बस अब मुझे तो यही सेवा देनी है, यही रहना है। दादियों ने भी परख लिया और उन्होंने भी कहा कि अगर छुट्टी मिलती है चिट्ठी लेकर के आ जाना, पिताजी की चिट्ठी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वो कहानी लंबी है, मैं शॉर्ट में ये सुनाऊंगा कि मैं एक साल के बाद 72 में चिट्ठी लेकर के हाई स्कूल पूरा किया और आ गया, 16 साल की उम्र में ही समर्पित हो गया। उसके बाद वो जो दादाजी के अंदर वो विद्या थी उसका उन्होंने सब प्रकार का प्रयोग किया, कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने, कैसे भी करके उसको वहां नहीं रहने देना है। लेकिन बाबा ने जो हम सबको लाइट का कवच पहनाया है, उस लाइट के कवच को वो आत्माएं कोई भी भेद नहीं सकती, वो मेरा अनुभव है। उनको पता चलता था कि मैं यहां से कहां जा रहा हूं, किधर जा रहा हूं, गांव में यहां से मैं निकला हूं तो पूरे गांव में बता देंगे कि वो निकल गया है, वहां से वहां चला गया है, इतनी सिद्धि थी उनके पास। जब मैं वहां जाता था गांव में कभी एक साल दो साल के बाद, तो कहते थे कि मेरी शक्तियां वहां जाती हैं लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाती, आपको वहां से डिस्टर्ब नहीं कर पाती। बहुत कोशिश की मैंने, वहां एक बहुत बड़ी लाइट है, तो हमने सोचा शायद शांति स्तंभ की लाइट दिखाई देती होगी। तो कहने लगे, नहीं वो लाइट तो है लेकिन बहुत आपके चारों ओर एक बहुत लाइट का घेरा है, इसलिए वो शक्तियां डर के वापस आ जाती, वो आपके पास बात भी नहीं कर पाती। तो मुझे एक बहुत बड़ा विश्वास हो गया कि हम सबके साथ सुरक्षा कवच है, अगर हमारा बाबा में बहुत फेथ है, निश्चय है, बाबा से सच्ची लगन है, तो ये एक बहुत सुंदर लाइट का कवच अपने आप तैयार होता है। अंदर का शुद्ध संकल्प है कि हमें बाबा की सेवा करनी है, बाबा का ही होकर रहना है, तो ये भी एक बहुत शुद्ध विचारों का ओरा है और इस ओरे को कोई भी आत्माएं भेद नहीं सकती। उन्होंने बहुत प्रयास किए और कुछ किए, माँ के ऊपर कर दिया, माँ एकदम बस मेरी रट लगाने लगी, बुला दो बुला दो बुला दो, छोड़ा नहीं उन्होंने। और जब तक हमको मैसेज मिला तब तक उसने शरीर छोड़ दिया, और जब मैं गया वहां पर तो इतना जबरदस्त वो भारी वातावरण था, उसके बीच में बाबा ही सुरक्षा कवच था, नहीं तो किसी भी तरह से मैं उस घर से वापस फिर नहीं आ सकता था। मैं तो यहां से 15 दिन की छुट्टी लेके गया था कि माँ का भोग लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मैं अकेला हूं परिवार में, जवाबदारियां होती हैं, तो बहुत सारा संकल्प यहां से करके गया था। लेकिन जब वहां गया तो एक संदेशी मेरे साथ थी, उसको मैंने कहा तुम आज भोग लगाओ बाबा को, पूछो क्या करना है आगे। वो भोग लगाने गई और ऊपर से बहुत भयानक दृश्य देख करके आ गई, सब बाबा ने उसको दिखा दिया क्या होने वाला है। बाबा ने उसको दिखाया, इतने मोटे मोटे रस्सों में इस बच्चे को बांधा जा रहा है और इस बच्चे को बोलो अगर अपनी सुरक्षा करनी है तो केवल 3 दिन इस स्थान पर रहेगा, चौथे दिन यहां नहीं रहेगा। 3 दिन तो बाबा का घेरा है, चौथे दिन बाबा हाथ खींच लेगा, इसलिए 3 दिन तक सुरक्षा है और 3 दिन में जो कुछ करना है कर लो। बाबा का संदेश आ रहा है और संदेश एक की तरफ आएगा तो हो सकता है उसमें थोड़ा संशय पैदा हो, संदेशी तो अपने मन से भी कुछ सुनाए, लेकिन चाचा जी बाजू में बैठे थे, वे कुमार थे, पवित्र थे, अभी भी हैं, उन्होंने भी यही अनुभव किया। तो जब संदेश ही सुना रही थी सभा में हमारे हम लोगों के बीच में कि ऐसे ऐसे बाबा ने दृश्य दिखाया, तो वो भी कहते हमने भी यही देखा, यही है। हमने सोचा था जहां उनका संस्कार किया है वहां हम सबको ले जाएंगे, योग करेंगे, बहुत सारे प्लान करके, हमको नहीं पता था इस तरह से उसका शरीर छूटा है। हमने सोचा अपने मुंह से गई होगी। बाबा ने एकदम मना किया, कहीं नहीं जाना, देखने भी नहीं जाना, किधर भी नहीं जाना, और 3 दिन में जो करना है करो और वापस। इतना नेगेटिव वातावरण का प्रभाव था कि अगर मैं 3 दिन को क्रॉस करता तो 4th दिन मैं यहां वापस नहीं आ सकता था। फटाफट सब कार्य किए, भोग लगाया, ब्रह्मा भोजन कराया, जो संबंधी आ सकते थे बुला लिया, खिला दिया सबको, और 3rd दिन उठाया, कहता कितनी जल्दी क्या है। पिताजी भी बोले कैसे होगा आगे। हमने कहा आप सब तुम कुमार हो गए ना, मेरे जैसे हो गए, अभी घर में तो कोई रहा ही नहीं, घर में और कोई खाना बनाने वाला ही नहीं है, तो आप सब हमारे जैसे हो गए, अभी कुछ समय खाओ पियो बनाओ अपना, और फिर जो मम्मी ने संभाल के रखा है ना वो सब चीजें मुझे दिखा दो और वो सफल कर दो सब। तो उन्होंने तो बहुत तैयारी की थी, गुप्त रीति से, बच्चे एक अकेला बच्चा होता है तो उसकी सब तैयारियां होती हैं, माताओं को तो बहुत रहता ही है, बच्ची तो जाएगी दूसरे घर में, उसकी शादी कर दिया पूरा हो गया या सरेंडर कर दिया, लेकिन बच्चा अकेला है तो उसकी शादी करेंगे, बहू आएगी, ये होगा वो होगा, बहुत प्लान होते हैं माताओं के अंदर भले ज्ञान में हो, तो उसके पास भी बहुत प्लान होंगे, थी ज्ञान में प्लान थे। तो हमने देखा, हमने कहा देखो तो क्या क्या रखा है, तो ऐसी सुंदर रंग बिरंगी साड़ियां थी, इतने वैरायटी जेवर थे, गहने थे, बर्तन थे बड़े बड़े। हमने देखना वो माता जी ने शरीर तो छोड़ा है लेकिन इसके चारों तरफ घूमेंगी, कहीं जाएंगी नहीं, इसलिए सबसे पहले इसको निकाल दो, जो है सब दान कर दो, यज्ञ में दे दो या बेच करके पैसा सफल कर दो, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, लेकिन घर नहीं बेचना, घर बाबा का है, गीता पाठशाला चलती है, खेती नहीं बेचना, उसे सदा ही आता है। बाकी जो हमारी दुकानें थी, बैल गाय भैंस और चीजें थी, उनको सब बिचवा दिया गांव में, ये सब निकाल दो, फ्री हो जाओ, और खेती वाले गांव वाले अपने आप संभालेंगे, जो क्लास करते हैं अभी भी संभाल रहे हैं, आज मैं समझता हूँ 35 साल हो गए इस बात को, बहुत अच्छी तरह से चल रहा है घर, सुरक्षित। लेकिन एक बहुत अच्छा बाबा के प्यार का, दुआओं का, लाइट का घेरा हमारी सुरक्षा करता है। हर एक अगर अपने आप की स्वरक्षा करना चाहता है तो जैसे आज अगर आपको यहां से कहा जाए नक्की लेख हो क्या हो, तो आप कुछ तो सुरक्षा के लिए साधन बनाएंगे ना अपने साथ, बरसात पड़ रही है, तूफान चल रहा है, कम से कम छाता तो साथ ले लें, बिना छाता ले जाएंगे कहेंगे नहीं, कुछ तो होना चाहिए। तो बाबा ने भी हम सबको इस माया के राज्य में, जब चारों तरफ से कोहरा छाया हुआ है विकारों का, बहुत चारों तरफ से बवंडर है माया का, इस समय हम सबके पास 3 प्रकार की छतरी होनी चाहिए, कभी कोई छतरी काम आ जाती है, कभी कोई आ जाती है। ये तो छतरी में भी 8 तीलियां दिखाई हैं यादगार में, एक छतरी के अंदर भी मजबूत चाहिए, अगर 1-2 टूटी है तो भी छतरी बराबर काम नहीं करेगी। बाबा ने भी हम सबको जो याद की छतरी दी है, जिसमें हम बाबा की याद में रहते, वो छत्र छाया है, कल भी बाबा के वरदान में था, यही आपकी सेफ्टी का साधन है, बाबा की याद ही सेफ्टी करती है, तो ये छतरी सबसे बढ़िया छतरी है। बाबा के साथ साथ है और बाबा की याद में है, तो वो याद की छत्र छाया साथ रहती है, और 8 तीलियां काम करती हैं, सकती है ना 8, जहां सहन करने की जरूरत है, जहां सामना करने की जरूरत है, जहां समाने की जरूरत है, कुछ परखने की, कुछ निर्णय करने की, सब शक्तियां एक साथ काम करना शुरू हो जाती है। लेकिन छतरी बराबर खुली होनी चाहिए ऊपर, छत्र छाया के रूप में। तो जब बाबा के याद की छतरी के नीचे हम रहते हैं तो कोई भी कैसी भी आत्माएं हों अटैक नहीं कर सकती। एक लाइट का घेरा है, शुद्ध संकल्पों का उरा है, और दूसरी याद की छतरी है, और तीसरी अपने परिवार की दुआएं हैं। दुआएं बहुत समय मेरे साथ देती हैं। अगर हमने समय पर किसी को मदद की है, सुख दिए हैं, सेवाएं दी हैं, तो आपने सुना होगा हमारी दादियां सदा यही कहती रही हैं, सबकी दुआएं हैं। पेपर आए उनके सामने भी, कोई ऐसा नहीं कहेगा जिसके सामने कोई पेपर ही ना आया हो, संपन्न बन गया हो। ब्रह्मा बाबा के आगे भी बहुत सारे पेपर आए, उनको क्रॉस किया, उनके पास तो चलो बाबा की शक्ति हो तो छत्र छाया क्या, वो तो प्रवेशता ही थी। लेकिन दादी तो साकार में हम सब जैसी थी, उनको बाबा ने निमित्त बनाया और वो उस छतरी के नीचे, दुआओं की छतरी के नीचे रह के कहती थी बाबा बैठा है, उसकी दुआएं हैं, परिवार की दुआएं हैं। और उसके कारण कभी भी उनको दर्द, दुख, तकलीफ, कोई भी प्रकार की रुकावट महसूस नहीं हुई। भले शरीर का विघ्न सबसे बड़ा आया, हिसाब किताब आए, लेकिन कभी भी पूछो दादी कोई तकलीफ है, नहीं नहीं सबकी दुआएं, मुझे तो कोई दर्द नहीं। सुना होगा एक बात, मैंने कई बार क्लास में सुनाई है कि दादी जी के पास जब वो बॉम्बे हॉस्पिटल से आई थी तो मैं अचानक पहुंचा, कमरे में गया, लेटी थी सामने, फिर पीछे चारपाई उठाई बैठ गई। मैंने कहा दादी आज आपको पत्र लिखाना है। बहुत बोला मैंने पत्र लिखाना है, बोलना तो आप देखते थे दादी ने कम कर दिया था, बहुत कम बोलती थी, नहीं तो चुप रहती थी। तो मुझे बहुत पहले प्यार से कहा नहीं नहीं तुम बहुत अच्छा लिखते हो, दादी से भी अच्छा लिखते हो, बहुत अच्छी महिमा कहने लगी। नहीं नहीं दादी, मैं बहुत समय से आपके नाम से लिख रहा हूं, पहले तो आप खुद लिखाती थी, एक साल डेढ़ साल हो गया है जो आपने कभी भी कोई पत्र नहीं लिखाया और हर मास में दादी प्रकाशमणि बन के लिखता हूं, तो मुझे कभी कभी दिल खाती है कि ये तो मेरी तरफ से जा रहा आपका, नहीं नहीं तुमको बाबा ने दादी ने वरदान दिया लिखो, अच्छा है, नहीं अभी आप आ गई ना अभी आप लिखो। मैं बहुत काफी अच्छी तरह से उनसे प्यार से बोलना लगा, हमने कहा नहीं दादी आपको लिखाना है, कुछ तो लिखाओ फिर मैं बढ़ा लूंगा। तो मेरी रूरियां चल रही थी, दादी मुस्कुरा रही थी, थोड़ा थोड़ा बोल रही थी, तब तक गुलजार दादी आ गई बीच में। तो गुलजार दादी कहती क्या दोनों रूरियान कर रहे हो, तो दादी बड़े प्यार से बोलती है गुल आज ये बड़ी जिद कर रहा है, कहता है आप पत्र लिखाओ पत्र लिखाओ, लिखता तो बहुत अच्छा है ये। दादी कहती दादी लिखाना तो चाहिए आपको, लिखाना तो चाहिए, बहुत प्यार से बोला, अच्छा लिखाना है, अरे बैठो लिखो। तो पहली लाइन क्या लिखाई, कहती लिखो दादी 100% ओके है। मैंने कहा मैं नहीं लिखूंगा, हमने लोग और समझेंगे, एक तो जो बिल्कुल झूठ लिख दिया। तो कहती क्यों मेरे क्या हुआ है, दादी कैसे लिखूं 100% ओके हैं, अभी नली लगी है, अभी हॉस्पिटल से आप आई हैं, चारपाई से भी नहीं उठ रहे हैं, ओके कैसे हैं। बोली मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं तो बिल्कुल ओके हूं, मुझे तो बाबा की परिवार की इतनी दुआएं हैं, मुझे कोई दर्द है क्या। मेरा दर्द तो नहीं है लेकिन बीमार तो है। बोली अरे डॉक्टरों का हिसाब किताब है, ये उनका चक्कर है, हमारे कुछ नहीं, ये तो 19-20 होता है, तुम लिखो 100% ओके है दादी। मैंने कहा ठीक है। इतने निश्चय से और इतनी भावना से वो बात कही उन्होंने, जो उनको ये भान ही नहीं था कि मैं बीमार हूं। इतनी बाबा की परिवार की सबकी दुआएं उस आत्मा को उस बीमारी के भान से ऊपर उठा चुके थे, शरीर का ही भान नहीं था। एक दिन हम बैठे बैठे अचानक गए, चारपाई से उठी दादी, हम तीन भाई मिलने गए थे कमरे में ही, खड़ी हो गई, पहले थोड़ा ठीक थी उस समय, खड़ी हो गई, खड़ी होकर के ऐसे प्यार से हाथ फैला के आओ आओ लड़के आओ ऐसे किया और इसे तीनों को बाकी में ले लिया। इतनी देर तक प्यार करती रही, आओ आओ आओ, इतना प्यार। और फिर कहती है देखा बाबा ने तुम लोगों को कितना प्यार किया, भूल गई कि मैंने किया, बाबा ने किया। अपने देह को एकदम विस्मृत कर दिया, कर्मातीत स्थिति बना ली, केवल बाबा 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 का एक अनाद नाद। तो कितनी भी बातें आई लेकिन वो सुरक्षित महसूस करती थी, मेरे पर कुछ नहीं है, सबकी दुआएं, सबका स्नेह है, बाबा साथ है। तो हम सभी भी अपना अपना सुरक्षा कवच खुद क्रिएट करें, क्योंकि हिसाब किताब तो कभी भी किसी के सामने आते हैं। शरीर का भी हिसाब किताब है, संबंधों का भी हिसाब किताब है, धन का भी है, तन का भी है, कोई भी प्रकार का पेपर आ जाए लेकिन वो पेपर आपको हिला न दे, डगमग न कर दे। कई लोग छोटा सा पेपर आता है उसको सोच सोच करके इतना बड़ा कर देते, पहाड़ बना देते, है राई जितना लेकिन सोचने से वो पहाड़ बन जाता है, और वर्णन कर दिया तो क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कोई भी बातें आती, बाबा कहता बच्चे अधिक सोचो नहीं, ये सोचने की बीमारी सबसे बड़ी बीमारी है। आई है बात चली जाएगी, कोई सदा काल का पेपर नहीं होता, दो दिन चार दिन छह दिन कोई रहती बात है। तो सोच सोच करके आप लंबा समय खींचो नहीं, फुल स्टॉप लगा दो। तो अगर स्वरक्षक बनना है तो संकल्पों पर ब्रेक देने का अभ्यास करो। बात आई है खत्म हो जाएगी, बाबा मेरे साथ है, परिवार मेरे साथ है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पार हो जाएंगे, कल्प कल्प हमने विजय पाई है। तो जब हमारे ऊपर ये तीनों छतरी हैं तो हम स्वरक्षक खुद बन जाते हैं, और साथ साथ इस विकारी साम्राज्य के अंदर, विकारों के दुनिया के वायुमंडल में रह करके सबसे जरूरी है अपनी रूहानियत को बढ़ाना, एक हमारी दिव्यता की पर्सनैलिटी बन जाए, हमारे चेहरे से, हमारे बोलचाल से, हमारे रुआब से केवल रूहानियत ही दिखाई दे, कोई की नजर नहीं लगेगी, कोई कुछ भी नहीं कर सकता है अगर मैं अपने रूहानियत की स्थिति में रहता हूं, केवल आत्मिक स्थिति का अभ्यास करता हूं। तो सब ध्यान रखना, स्वरक्षक मुझे खुद बनना है। बाबा तो है हमारे ऊपर, वो रक्षा करेगा, लेकिन उसकी रक्षा के लिए भी हमें बाबा से कनेक्शन जोड़ करके रखना पड़ेगा। टूटा हुआ कनेक्शन होगा तो बाबा कहेगा मैं क्या करूं, मेरे शक्तियों कोई अनुभव ही नहीं कर पाता है। इसलिए कनेक्शन जुटा हुआ है तो बाबा स्वरक्षक को मदद करता है, लेकिन पहले स्वरक्षक। और स्वरक्षक बनने वाली आत्माएं मर्यादा रक्षक स्वतः बन जाती है। बाबा ने हमारी सुरक्षा के लिए हमारे आगे एक मर्यादा की लकीर खींच करके दी है, जैसे कहते लक्ष्मण रेखा खींच दी सीता के आगे। वो जानता था कोई खतरा है, ये कोई छल है, उसको पता है ये माया के राज्य में हम बैठे हैं, कुछ न कुछ है, ये सोनी हिरण होता ही नहीं है, और ये आवाज जो आ रही है राम की है ही नहीं, उसको मालूम है। लेकिन सीता परख नहीं पा रही थी, जिद कहने लगी नहीं तुम जाओ यहां से, मदद करो राम को। कहता अच्छा मैं जाता तो हूं, लेकिन हे सीते तुम इस रेखा से बाहर नहीं जाना। वो कौन सी रेखा थी, मन को लक्ष्य दे दिया कि इस लक्ष्य के बाहर नहीं जाना। बाबा ने भी हम सबको लक्ष्य दिया है, और लक्ष्मण रेखा अगर क्रॉस की है तो रावण तो कहीं भी ले जाएगा, शोक वाटिका में ले जाएगा, शोक में नहीं भी ले जाएगा, वह शोक वाटिका नहीं है, वो शोक की सारा दिन रोती रही, बिछुड़ गई, वियोगी हो गई, केवल थोड़ा संकल्प से अंगूठा बाहर निकाल दिया। बाबा भी कहता है बच्चे जो तुम्हारे लिए ब्राह्मण जीवन में मर्यादाएं बनाई गई हैं, इस पर बहुत दृढ़ता के साथ पक्के रहो, मरेंगे मिटेंगे लेकिन अपनी मर्यादाओं से नहीं हटेंगे। ईश्वरीय मर्यादाएं हमारा श्रृंगार है, और इसमें कई आत्माएं अलबेली हैं, इसके कारण बहुत विघ्न पड़ते हैं, कभी भी माया उनको खींच के ले जा सकती है। इसलिए ईश्वरीय मर्यादाओं में मैं आपको 6-7 बातें बताता हूं, बहुत अंडरलाइन करना कि इन मर्यादाओं को कभी भी मुझे उल्लंघन नहीं करना है। स्मृति के लिए मर्यादाएं, जो हमारी याददाश्त है, स्मृति स्वरूप स्थिति है, उसमें बहुत सी पास्ट की स्मृतियां कायम हैं। जब आप किसी अच्छे कार्य के लिए बैठते हैं, योग में बैठते हैं, तो कई बार वो पास्ट की स्मृतियां बहुत डिस्टर्ब करते हैं आत्मा को। मेरे से ये हुआ, मेरे से ऐसा हुआ, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। पिछले जन्मों की बातें संस्कारों में हैं, लेकिन स्मृतियों में इस जन्म की सब बातें रहती हैं। भले कोई कहे मैं भूल गया हूं, लेकिन कई ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो स्मृतियों में छपी रहती हैं। इसलिए स्मृति के लिए मर्यादा है कि जो कुछ बीत गया उसको फुल स्टॉप लगा दो, उसका चिंतन छोड़ दो। पास्ट का चिंतन नहीं है और कल की चिंता नहीं है, चिंता भी नहीं करनी कल क्या होगा, लेकिन वर्तमान को मुझे अच्छा बनाना है। सब कुछ अच्छे से अच्छा हो जाएगा, ड्रामा कल्याणकारी है, कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन वर्तमान में फुल मर्यादाओं पर ध्यान दो। जो ईश्वरीय मर्यादाओं के बंधन में रहते हैं, कोई पास्ट का चिंतन नहीं करते और भविष्य के लिए कोई प्लानिंग ऐसी नहीं है, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे ऐसा कर, वर्तमान मेरा गलत ना हो। वर्तमान पर एक एक कदम कहते फूक फूक करके रखना है। दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, कृति, बोल चाल, हर एक के लिए मर्यादाएं अलग अलग हैं। बाबा की मुरलियां श्रीमत और मर्यादाओं से भरी हुई है। अगर कोई अंडरलाइन करेगा तो अंदर अलग अलग कर सकता है कि ये श्रीमत है, ये मर्यादाएं हैं, ये नियम है, ये दिनचर्या है, सब कुछ बाबा ने बताया है। हम सिर्फ रिवाइज करा रहे हैं आपको कि अंडरलाइन करके रहना। स्मृति में अगर कोई गलतियां हुई हैं, कोई भूलें भी हुई हैं, बाबा कहता बच्चे भूल जाओ, उनको बार बार रिवाइज नहीं करो। वृत्ति को अनासक्त बना लो, उपराम बना लो, बेहद में ले आओ। ये वृत्तियां अगर अनासक्त और उपराम हो गई तो इनकी चंचलता समाप्त हो जाएगी। नहीं तो वृत्ति बहुत चंचल है, संकल्प से भी पास्ट। आप संकल्प चला रहे हैं, हमारे संकल्प चल रहे हैं, लेकिन संकल्प से भी सूक्ष्म वृत्तियां कहां कहां भटक जाती हैं। वृत्तियों को चेंज करने के लिए व्रत लेने की जरूरत है। जब हम दृढ़ता से कोई संकल्प लेते हैं व्रत की रीति से, तो वृत्तियां धीरे धीरे परिवर्तन हो जाती है। तो कोई भी चीज की आसक्ति नहीं। बाबा दो रोटी खिला रहा है, प्यार से खाओ, रहो मोह से, लेकिन ज्यादा हवच नहीं, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। कई चीजों के पीछे आत्माएं भाग रही हैं, वृत्तियां कैसे कंट्रोल में आएंगी। जितना बाबा ने दिया है उसमें संतुष्ट रहने की आदत डाल लो, वृत्तियां कंट्रोल में आ जाएंगी। बहुत कुछ दिया हर एक को, कोई कमी नहीं किसी के पास, लेकिन दूसरों से जब भेंट करते हैं तो लगता है मेरे पास कम है इसके पास ज्यादा है। इसलिए वृत्तियों को अनासक्त बना करके, उपराम रख करके, बेहद में रख करके चलना, ये है मर्यादा। और दृष्टि को केवल आत्मा के ऊपर ध्यान जाए कि आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास जितना हो सकता है। बाबा कहता है कितना पढ़ाता है बच्चे, बाबा को बहुत रहम आता है, मेरे बच्चे देही अभिमानी बन जाए, बस सारी मुरलियों का, साकार मुरलियों का सब एसेंस आ जाता है, देही अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो, देह मान को खत्म करो। जितना है दृष्टि के अंदर एक ऐसा आत्मा को देखने का अभ्यास है, रूह को देखने का अभ्यास है, कर्म करते हुए मैं आत्मा मालिक इन कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूं, मैं करावन हार, कर्मेंद्रियां करण हार, ऐसी स्मृति से कर्म करो और अपनी दृष्टि को बड़ा शुद्ध पवित्र निर्मल बनाओ, किसी की देह की तरफ दृष्टि न जाए। बाबा ये कहता है बच्चे सांप को नहीं देखो, मणि को देखो। ये शरीर सांप है, कभी भी डस सकता है अगर इसकी तरफ ध्यान जाएगा। इसलिए आत्मा की चमकते हुए मणि को देखो। कोई कैसी भी आत्मा आएगी, इसको देखेंगे तो आपके ऊपर उसकी छाया नहीं पड़े, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसके रूप रंग नस्ल पर ध्यान नहीं जाएगा। दृष्टि, वृत्ति, स्मृति के बाद है बोल। और बोल पर अगर ब्राह्मण जीवन में कंट्रोल नहीं है, बोल के लिए बहुत सारी मर्यादाएं हैं। अगर आप अव्यक्त मुरलियों की स्टडी करें ना, कम से कम बहुत सी मुरलियां बोल पर चली बाबा की, बहुत सारी मुरलियां हैं। और उसमें बाबा ने अंडरलाइन कराया है कि बच्चे सब संबंध जो बिगड़ रहे हैं, आपस में टकराव हो रहे हैं, उसका कारण केवल बोल है। बोल दिया, निकल गया, चाहता नहीं था, हो गया। इसलिए बाबा कहता बच्चे कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सम्मान से बोलो, जो जरूरी है वही बोलो, बाकी क्यों सब बोल रहे हो जितना बोलते। अगर बोल पर कोई ने कंट्रोल कर लिया तो बहुत कुछ आपस में सुधार हो सकता है। नहीं बोलना अच्छा है, चुप रहना अच्छा है, लेकिन बोल करके संबंध बिगाड़ना नहीं है। बोल पर बहुत ध्यान चाहिए। कर्म सुखदायी हो, सुख देना और सुख लेना। सेवाओं की फील्ड के अंदर हम सब जाते हैं और सेवाओं के बीच में बहुत टकराव की स्थिति अगर पैदा होती है, बहुत नाम बदनाम होता है। इस बात को सबको अंडरलाइन करना चाहिए कि किसी भी कारण से आपस के संबंधों में टकराव न हो जाए, कोई सेवा हमको डिस्टर्ब न कर दे, बाबा का नाम बदनाम न हो। क्या चाहिए बाबा को? क्या हम दिखाना चाहते हैं कि हमारे इतने सेंटर्स हैं, इतने स्टूडेंट्स हैं, इतने सब हैं? किस लिए सब मारा मारी है? बहुत समझ करके, सेवा के भाव को समझ करके, कर्म के सिद्धांत को समझ करके, सुख दो सुख लो, ये मर्यादा है। और इस मर्यादा का अगर उल्लंघन करके कोई कुछ कर रहा है, वो कभी सुखी नहीं रहता। इसलिए बहुत ध्यान रखना। सुखदाता बाबा ने हमको एक बहुत सुंदर मर्यादा की लकीर बनाई है कि सेवा करो लेकिन निस्वार्थ भाव से करो, कर्म करो स्वार्थ नहीं रहो, निस्वार्थ कर्म करके। अगर कहीं पर भी ऐसे टकराव की स्थिति है, त्याग करके बाबा को प्रत्यक्ष करना है। कर्म के लिए मर्यादा है सुख दो सुख लो। संबंध हमारे बहुत मधुर और मिलनसार हो, संबंधों के लिए भी मर्यादाएं हैं, चाहे लौकिक संबंध है चाहे अलौकिक संबंध है, उसमें बैलेंस है न्यारे और प्यारेपन का। जितना हम प्यार दे रहे हैं, प्यारे बन करके रहे हैं, बाबा कहता उसके पहले अंडरलाइन करो हम न्यारे हैं, न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस, मधुरता के साथ अंदर की गंभीरता, जिससे कोई को बाह्य मुक्ता में आने की हिम्मत न पड़े, ये संबंध संपर्क की मर्यादाएं हैं। तो जब हम इन मर्यादाओं को एक कंगन के रूप में बांध लेते हैं कि बाबा ने हमारी हर बात के लिए, दृष्टि वृत्ति स्मृति कृति बोल चाल संबंध सबके लिए मर्यादाएं बताई हैं, और उन मर्यादाओं पर मुझे चलना ही है, पक्का कंगन है ये। जैसे पवित्रता के लिए बाबा कहता है बच्चे कुछ भी हो जाए लेकिन इस व्रत को खंडित नहीं होने देना, ये ब्राह्मण जीवन की नींव है, फाउंडेशन है, और अगर इसमें कहीं लोज कोई है तो कुल कलंकित कहलाता है। इसलिए कभी भी कुछ भी हो जाए, ईश्वरीय मर्यादा की रेखा में रह करके कुल को कभी भी दाग नहीं लगाना। बहुत दृढ़ता के साथ इस व्रत को पालन करना है, चाहे प्रवृत्ति है चाहे समर्पित है, कोई के लिए भी इसमें छूट नहीं है। ऐसे भी नहीं भाई हमने तो शादी की, परिवार में रहे, हमारे लिए तो कैसे संभव हो सकता है? बाबा कहता नहीं, अंतिम जन्म में तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण हो, ब्रह्मा के बच्चे भाई और बहन हो, बहुत आंतरिक वृत्ति पवित्र और शुद्ध चाहिए, ये तुम्हारे लिए मर्यादा है। और इस मर्यादा के कंगन को बांधो, तब योग के अच्छे अनुभव कर सकोगे। अगर इस बंधन में जरा भी ढीले हो, कितना भी ज्ञान सुनाओ, कितना भी योग में बैठ जाओ, अनुभव नहीं हो गए। इसलिए दृढ़ता के साथ इस व्रत को बहुत मजबूत करना है। इसमें जरा भी मनसा से भी अगर आ रहे हैं, बाबा कई बार कहते बच्चे तूफान तो आएंगे ना, मेरे सामने भी आते हैं, महारथियों के सामने भी आते हैं, लेकिन आते हैं तो चले जाते हैं, हिलाते नहीं है। संकल्प आया, इतनी शक्ति है इतना मन को बिजी किया हुआ है सेवाओं में, अच्छे चिंतन में, इस एनर्जी को यूज किया है। अगर इस एनर्जी को यूज नहीं कर रहे हैं तो ये डिस्टर्ब करेगी, तो तंग करेगी, तो परेशान होंगे, नींद पिटेगी। इस एनर्जी को खूब सेवा में लगाओ, खूब बिजी करो, खूब थकाओ शरीर को, फ्री अगर रहेंगे तो परेशान हो जाएंगे। इसलिए जरूरी है जब समय मिलता है कुछ लिखो, कुछ पढ़ो। मेरे को तो एक बहुत अच्छी आदत मैंने डाली है, जब भी एक घंटा भी मेरे पास समय मिलता है, ज्ञानामृत आई मैंने उठाई और फटाफट पूरी ज्ञानामृत पढ़ डाली, एक भी लेख मैं नहीं छोड़ता। कोई नई पुस्तक बाबा की निकली, कोई भी ऐसे ज्ञान रत्नों का खजाना निकला, सब सामने रखे किताबें पढ़ लिया उठा करके, कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा चिंतन मिल जाता है। हर एक एक लक्ष्य रखो, मन को फ्री नहीं छोड़ना इधर उधर, छोड़ोगे तो इसके अंदर कुछ न कुछ बेकार के इधर उधर के विचार आएंगे, परेशान करेंगे। इस एनर्जी को, शक्ति है रचना की, शक्ति को रचना के कार्य में लगाओ। अच्छा अच्छा लेख लिखो, अच्छा चिंतन लिखो, कोई काम आ रहा है या नहीं आ रहा है ये भी नहीं सोचो। कई सोचने लगते हैं मैं तो इतना अच्छा लिखता हूं, कभी मेरा मैगजीन में तो छपता ही नहीं। छपे या न छपे, आपका चिंतन तो अच्छा बन गया, आपकी विचारधाराओं में तो ज्ञान आ गया, और लिखा हुआ है अगर आपके पास, नोट किया हुआ है, तो कभी भी समय आएगा पढ़ोगे तो लगेगा अरे इतना अच्छा विचार मेरा चला, खुशी होगी। इसलिए कुछ न कुछ आदत ऐसी हो जो मन को खूब बिजी करे। सेवाएं हैं, खूब सेवाएं करें। जहां पर भी कोई सेवा मिल जाती है, ये सेवा मेरी नहीं है, बाबा तो कितनी छोटी छोटी सेवाओं के लिए कहता है मुरली के साकार मुरली में, बच्चे छोटी सेवा नहीं है, बहुत बड़ी सेवा है। बर्तन मांजना बहुत बड़ी सेवा है, झाड़ू लगाना बहुत बड़ी सेवा है, घर के काम है, अपने काम है, क्यों हम किसी पर डिपेंड करें। मधुबन में 12 साल तक एक मजदूर नहीं था, एक भी मजदूर नहीं था यहाँ पर जब हम लोग आए समर्पित हुए। 71 में आए, 72 में समर्पित हुए, और 72 से लेकर के 83 तक मधुबन के भाइयों ने ही सारी कारोबार, जितनी छतें पड़ी, मकान बने, सब कुछ मधुबन के भाइयों ने किया है। ओम शांति भवन लास्ट बना, पता नहीं कौन सा वरदान बाबा को देना था ओम शांति भवन के साथ, हम लोगों की सब कर्मणा सेवाएं छूट गई। जो स्थूल सेवाएं थी, कर्मणा तो है सब, लेकिन जो ऐसी सेवाएं थी, जैसे धोबी घाट हम पाटे पर करते थे, धोबी जैसे पाटा लगाते ना चटका, ऐसे यहाँ धोबी घाट था हमारा, सब बहनों के कपड़े रात को लेकर के, भाई बहनों के, उस समय थे 100-150 लोग, उन सब के कपड़े लेके रात को भट्टी चढ़ाते थे, सोडा साबुन में गर्म करते थे पानी में, और सुबह चटका लगाते थे। क्लास पूरा होता था, दीदी दादी आके हलवा खिलाती थी, मौज करते थे, पिकनिक की रीति से सेवा करते थे, खेल खेल में। वहां से उठे, तैयार हुए, नहाया धोया, जाके रोटी बना रहे हैं, आटा गूंद रहे हैं, सब्जियां काट रहे हैं। फिर दादी कहती थी, अरे बाबा के कमरे में, हाल में, इनमें मजदूर नहीं आएंगे झाड़ू लगाने, ये आपको ही करना है, वो तो भिखारी लोग हैं। इतना ध्यान खिंचवाती थी, जो एक एक को मैं समझता हूं मैंने 8 या 10 डिपार्टमेंट में रोज सेवा की होगी, कोई सेवा किसी से छूटी नहीं। चाहे नाइट ड्यूटी करनी है, चाहे सुबह पानी गर्म करना है, सबके कमरों में बाल्टी में पहुंचाना है पानी, सब सेवाएं बाबा ने कराई। और मैं कहता हूं ये हम लोगों का इतना भाग्य रहा जो आज हम किसी पर भी डिपेंड नहीं है, सब कार्य कर लेते हैं, है मजदूर तो ठीक है, लेकिन नहीं है तो सब काम अपने आप हो रहे हैं। तो इसलिए कोई भी सेवा को ये नहीं समझो तो बहुत छोटी सेवा है, यज्ञ सेवा है ना, बाबा ने हमें यज्ञ रक्षक बनाया है। आज भी बाबा ने कहा सेंटर भी छोटे छोटे यज्ञ हैं, बाबा का ये यज्ञ बहुत बड़ा यज्ञ है, और इस यज्ञ में कोई ने बहुत प्यार से अगर सेवा की है तो यज्ञ पिता अगर खुश हो गया तो उसके द्वारा, यज्ञ द्वारा मन इच्छित फल प्राप्त हो रहा है। हम लोगों को ये अनुभव है, अभी भी अनुभव है कि मन इच्छित फल क्या है, मन में उठने ही नहीं देता कोई संकल्प, अपने आप सब इच्छाएं पूरी हो रही है। उठाने की भी क्या जरूरत है कि संकल्प करूं ये मिल जाए, ये आ जाए, ये हो जाए, जरूरत है, आवश्यकता है, बाबा सामने से दे देता है, लो बच्चे। सतयुग में मिलेगा क्या मिलेगा उसको तो भविष्य जाने, लेकिन वर्तमान में बाबा ने सब प्रकार की इच्छाएं, सब प्रकार की कामनाएं, जो भी इच्छाएं हों जो भी आवश्यकताएं हों सब पूरी की हैं, तृप्त किया है, भरपूर किया है, क्योंकि यज्ञ रक्षक बन करके यज्ञ की सेवाएं की हैं। यज्ञ रक्षा के लिए चार बातें मैं आपको सुनाता हूं, अंडरलाइन करना। यज्ञ रक्षक वही बन सकता है जो एक नामी है, केवल एक का नाम बुद्धि में है, किसी देहधारी पर प्रभावित नहीं है। मुझे एक बाबा को प्रत्यक्ष करना, ये बाबा का यज्ञ है, बाबा का यज्ञ सो मेरा यज्ञ है। अगर इतनी अच्छी भावना बन जाए बाबा को ही देखना है, कई लोग आत्माओं को देख करके चलते हैं, बाबा के यज्ञ में तो बहुत कुछ आ रहा है ना, देखो लोग कैसे उड़ा रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। आप किसको देख करके समर्पित कर रहे हो, किसको देख करके यज्ञ में भेज रहे हो, दे रहे हो? अगर आत्माओं को देख करके दे रहे हो तो आपका जरूर निष्फल हो जाएगा, सफल नहीं होगा। अगर बाबा को देख करके दे रहे हो कि बाबा का यज्ञ है, वो सफल करेगा अपने आप, मैं तो बाबा की भंडारी में डालूं, बाबा उसको स्वीकार कर लेगा। इसलिए एक नामी एक व्रता बन करके रहना यज्ञ की सुरक्षा है, उसे वही बच्चे सफल कर पाते यज्ञ के अंदर। दूसरा, एकता का सूत्र अगर ब्राह्मणों ने बांधा हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है कि हम सब एक के हैं और एक को हमें प्रसिद्ध करना है एकता के सूत्र में बंध करके, एक मत होकर के, बहुत प्यार से स्नेह से अपनी गलतियों को स्वीकार करके, झुक करके, नम्रता के आधार से जो एकता का वातावरण बना देते हैं वो बाबा की यज्ञ रक्षक हैं। अगर टकराव की स्थिति पैदा करते हैं वो यज्ञ के अंदर विघ्न है। इसलिए बहुत ध्यान रखना कि हम सब ब्राह्मण कुलभूषण कहीं पर भी हैं, किसी भी कारण से मतभेद हो लेकिन मन भेद न हो। मते तो अलग अलग रहेंगी, मते तो एक होती भी नहीं है, लेकिन मतों को मन से न स्वीकार किया जाए, मन हमारा एक है, हम एक बाबा के बच्चे हैं, तब एकता कायम रहती है। और इकोनॉमी जितना हो सके, आज तक भी हम लोगों की रग रग में भरा हुआ है, भले कितना भी सब बाबा के घर में आ रहा है, संपन्न है, भरपूर है, लेकिन एक भी पैसा मेरे द्वारा व्यर्थ नहीं जा सकता। कभी भी ये शौक नहीं होता है किसके पास है तो मेरे डिपार्टमेंट में भी होना चाहिए। हम अगर इकोनॉमी से अपने डिपार्टमेंट को चला सकते हैं तो जहां 10 रुपया खर्च होता है हम सोचते हैं हमारे 2 रुपये में हो जाए काम, वो हमारा 8 अगर बच गया तो बाबा के घर में जमा हो जाएगी यज्ञ में। बहुत इकोनॉमी से जैसे बाबा ने दीदियों ने दादियों ने सिखाया, आज तक भी जो इसके पिल्लर पुराने हैं उनको वही ध्यान रहता है कि बाबा के घर का एक एक पैसा हीरे के समान है, ये रतन है, इसको व्यर्थ नहीं करना है, जरा भी कोई वेस्ट न जाए। आप लोग प्रवृत्ति में रहते भी ये ध्यान रखो, जो कुछ बाबा ने आपको दिया है ये प्रभु अमानत है, आप ट्रस्टी हैं उसके, उसको व्यर्थ नहीं कर सकते, देखा देखी में खर्च नहीं कर सकते, ये बाबा की दी हुई चीज है, कहीं पर भी व्यर्थ न जाए, सेवा में लगे, सफल हो, तब कहेंगे यज्ञ रक्षक बच्चे हैं। पहले यज्ञ के ऊपर ध्यान जाता है, यज्ञ में ये जरूरत है, हम तो 2 रोटी खा के सुखी रह रहे हैं, बाबा के घर में ये जाना चाहिए, बाबा के घर में ये होना चाहिए, यज्ञ में ये कमी नहीं आनी चाहिए, उनको यज्ञ का ध्यान रहता और यज्ञ की चिंता रहती। आज आप देख रहे हो लाखों लोग आते हैं, हजारों लोगों का भोजन बनता है, आप समझ सकते हो कितना बड़ा भंडारा चलता होगा, शायद विचार ही नहीं किया होगा कितना चावल बनता है, कितना गेहूं आता है, आटा बनता है, कितने प्रकार के मसाले आते हैं, कितने करोड़ों का तेल लगता है, कितना डीजल आता है, कितना पेट्रोल आता है, कभी इस पर शायद विचार चला हो किसी ब्राह्मण का, लेकिन जो यज्ञ के बच्चे हैं उनको ध्यान जाता है कि सब कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, कुछ मेरा भी योगदान है इसमें, भगवान सतयुग की रचना के लिए इतना बड़ा यज्ञ रचा है, कुछ मैं भी सफल कर लूं जो मुझे देने के लिए बंध जाए। वो सब कर रहे हैं, बहुत करने वाले हैं, मैंने नहीं किया तो क्या, तो बाबा नहीं करेगा नहीं बोएगा तो तुम क्या पाएगा। इसलिए बहुत ध्यान रखना है कि भगवान का रचा हुआ रुद्र यज्ञ, कम से कम उस यज्ञ के अंदर मेरा भी कुछ सफल हो जाए, कणा दाना इधर उधर व्यर्थ जा रहा उसे तो अच्छा यज्ञ में सफल हो जाए। यहां पर जितने गेहूं आते हैं ना, कुछ भाइयों ने जवाबदारी ले ली, अनन्य रत्नों ने, बताते नहीं कभी भी, पूरे साल में कितना खर्चा होगा हमको बता दो, डिपार्टमेंट वाले बता देते हैं, वो कैसे भी करके इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके ले आते हैं, भर देते हैं यज्ञ जब गेहूं की फसल कटती है। जहां से चावल आता है, एक जोन ने पूरी जवाबदारी ले ली, चावल की जवाबदारी हमारी है, भले अच्छे चावल कोई वीआईपी हिसाब से बहुत अच्छे चावल खरीदने पड़ते हैं, नहीं तो एक ही जोन ने सोचा कि नहीं मुझे यज्ञ में चावल की कमी नहीं होने देनी। गुड़ जो है हमारा कोल्हापुर साइड में इतना अच्छा यौगिक खेती का भी हो रहा है, ऑर्गेनिक यौगिक का, वो सब गुड़ बाबा के घर में सप्लाई करते हैं कि हम क्यों बेच करके पैसा कमाएं, बाबा के घर में जाए। ऐसे बहुत भावना वाले बाबा के बच्चे हैं, बहुत सच्चे दिल वाले बच्चे हैं, जो थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करते हैं और यज्ञ के अंदर भरपूर करा देते, भर देते, एक एक बोरी इकट्ठा करते हैं, 100 बोरी हो जाती है, 100 स्टूडेंट हैं तो सोचो, विचार करो, इतना बड़ा यज्ञ भगवान का कैसे चल रहा है। हम यज्ञ रक्षक हैं तो क्या हमारे हमारे अंदर वो रग है, वो भावना है कि हम भी बाबा के यज्ञ में कुछ सफल कर लें? तो जो शक्तियां बाबा मांगता नहीं है, मांगेगा तो कहता है आधा हो जाएगा आपका, मांग करके दोगे तो क्या होगा, इसलिए बहुत प्यार से स्वीकार करके इतनी पालना बाबा की यज्ञ से हमारी हो रही है। मैं कुछ गुप्त दान महापुण्य कर लूं, गुप्त करेंगे तो सफल हो जाएगा, और किसी को सुना करके कहेंगे, पूछ के कहेंगे तूने कितना किया, अच्छा तूने इतना किया, मैं भी कर देता हूं, कई लोग ऐसे पूछते हैं, पूछ लिया तो गया काम से। इसलिए बाबा कहता करना है जितना करो, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, गुप्त रीति से बाबा का यज्ञ चल रहा है, भंडारा भरपूर है, कोई भी चीज की कमी तो है ही नहीं। लेकिन भाग्य बनाने वालों को यह ध्यान रखना है कि मुझे क्या करना है, मेरा भाग्य कैसे बनेगा, और ऐसे गुप्त बाबा के बच्चे अपना भाग्य बना करके इतने बड़े यज्ञ को निर्विघ्न बना रहे हैं। उस दिन शायद मैंने बात सुनाई थी, इतना बड़ा कारोबार चल रहा है लेकिन कौन करा रहा है, कौन ऊपर से कर रहा है, किसी को पता नहीं चलता। तो बाबा के बच्चे गुप्त रीति से करके तान मान धन सफल करके मन की पवित्रता से, शुद्धता से, मर्यादाओं का पालन करके यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं। तो आप सभी स्वरक्षक, मर्यादा रक्षक और यज्ञ रक्षक बन करके यहां से दृढ़ता का संकल्प करके जाना कि हमको विजयी रत्नों की माला में पिरोना है। ठीक है, विजयी बनेंगे ना सब, कभी भी माया हार न खिला दे, बहुत पक्के योगी तपस्वी सच्चे सेवाधारी बन करके बाबा से सर्टिफिकेट लेना। ओम शांति। आज मैं अपनी जो एमपी की टीचर्स आई हैं, हाथ उठाओ, जो आप इंदौर जोन की टोटल टीचर्स हैं, आपके साथ मैं 10-15 मिनट बैठना चाहता हूँ छोटे हाल में। अभी बीच का जो गैप है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मुझे भी नीचे जाना है, आज मैं सिलीगुड़ी जा रहा हूँ, मैं आपके साथ 15-20 मिनट बैठूँगा। नारायण भाई आप भी आ जाना, थोड़ी सेवा के हिसाब से संबंध बात करनी, और कोई बात नहीं। ठीक है, तो अभी 3 मिनट योग करके फिर टीचर्स बहनें हिस्ट्री हॉल में चलेंगी, 15-20 मिनट उनसे।
प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं।
प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। सच्चे दिल पर साहब राज हर
श्रीमत पर कहे हाँ जी, एक बाबा तू जान कोई वादे के पक्के पक्के हैं।
प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यार जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। कोई आंच नहीं खुशियों में नाचते रहते हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं।
सच्चा साफ रहे निर्मल निश्चल जीवन वाले प्रभु को लगते अच्छे हैं।
प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं, जो दिल के सच्चे सच्चे हैं, जो दिल के सच्चे।
राजू भाई जी का बहुत बहुत थैंक्स।